हरे कृष्णा। मंदिर का वातावरण देखकर लगता है कि एकदम जोर जबरदस्त गीता जयंती मैराथन चल रहा है, जो हाल में चलता है, क्योंकि मैराथन का समय है, भक्त को ज़्यादा मिलना बहुत मुश्किल होता है कि सुबह से रात तक वो लोग व्यस्त रहते हैं ग्रंथ वितरण सेवा में। जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, गोपी जन वल्लभ विवरहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपा 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुंतरा श्रीमद् भागवतम की शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। तो अभी ये महीना गीता जयंती उत्सव, जिसको प्रभुपाद जी ने नाम रखे है कि मैराथन, गीता जयंती मैराथन। ये मैराथन का होता है, जैसे कि मैराथन रेस होता है, मैराथन रेस, तो ये भी एक होकर के मैराथन। इसलिए प्रभुपाद जी गीता जयंती मैराथन नाम रखे है, कि भक्त लोग अधिक से अधिक ग्रंथ वितरण में व्यस्त रहे। और दिसंबर महीना को चुन लिए थे, मैंने एक बार बताया था कि दिसंबर महीना चुनने का एक ही कारण था कि एक तो ये माघ शिष्य महीना है और मोक्षदा एकादशी का तिथि में भगवान अपना मुखर विंद को वाणी को अर्जुन को प्रदान की थी, जिसके लिए वह थे कि गीता जयंती उत्सव। दिसंबर महीने को चुनने का कारण है कि दिसंबर महीना 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरा विश्व व्यक्ति आनंद में रहना चाहते हैं, जिसके लिए आप बम्बई में जाकर देखिए, पूरा बम्बई नहीं, पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत में ऐसा कोई होटल नहीं है, ऐसा कोई बियर बार नहीं है जहाँ पे बड़ा अच्छे तरीके से लाइट के द्वारा डेकोरेशन करते हैं। क्योंकि व्यक्ति इस महीना को कहते हैं कि रिलैक्स ऑफ द मान, प्रभुपाद जी वर्णन किए तो दिसंबर महीना मीन्स रिलैक्स ऑफ द मान, मतलब ये महीना में ज़्यादा आनंद लेने का है। जिसके लिए प्रभुपाद ने देखा कि दिसंबर महीना जो एक ही महीना है जिसमें व्यक्ति पूरा साल भर मेहनत करने के बाद इस दिसंबर महीने में ज़्यादा आनंद लेने के लिए थोड़ा समय के लिए आनंद लेना नहीं चाहते, पूरा दिन भर 24 आवर्स यू वांट्स टू गेट एंजॉय। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपना घर छोड़कर सड़क में पहुंच जाते हैं। अगर आपने अमेरिका लंदन में अगर कोई गए तो उनको पता होगा कि इस 25 दिसंबर क्या होता है, पूरा रात भर व्यक्ति अपना घर छोड़कर बाहर आ जाते हैं, लगता है कि एकदम नया दिवाली बनाए, कोई भी घर में रहना नहीं चाहते, पूरा रात भर आनंद लेना है कोई भी तरीका से। आनंद करने के लिए एक से एक तरीका सामने खड़े होते थे। तो कहते कि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, श्री भोपाल जी को पता था कि हर व्यक्ति अपना घर छोड़कर बाहर आ जाते हैं, पूरा रोड भरे हुए, तो यही एक जगह उनको मिला जहां पे जाकर प्रचार कर सकते अच्छे तरीके से। जिसके लिए श्री भोपाल ये दिसंबर महीने को कहते कि मैराथन महीना, मतलब अधिक से अधिक भक्तों को मेहनत करने का है। इसके लिए कोई भी मंदिर में, सिर्फ मीरा रोड नहीं है, कई भी मंदिर में दिसंबर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग सुबह मंगल आरती करके अपना जप पगड़ी करके फिर निकल जाते हैं ग्रंथ वितरण में, तो मंदिर का दूसरे कार्यक्रम में भाग लेना उनके लिए मुश्किल रहता है। एक महीना में भक्तों को मतलब मैराथन मतलब अधिक से अधिक मेहनत करना है, जिस मेहनत के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 नंबर स्कंध है और 20 अध्याय श्लोक संख्या 15। उपपन्या बोलिए, जरा पीछे पीछे भाग लीजिए। श्री दुष्मंत उवाच उपपन्नम् इदं शुभ्रु जातया कुशी कन्नये स्वयं हि विनुते राज्यं कन्नका स्वदिशं वरं। श्री दुष्मंत उवाच उपपन्नम् इदं शुभ्रु, उपपन्नम् इदं शुभ्रु, जातया कूशिकन्नये जातया कूशिकन्नये स्वयं ही वीनुते राज्ञम् कन्नकाशदिशम्बरम् श्रीदुष्मन्त उवाच उपपन्नम् इदं शुभ्रु जातया कूशिकन्नये स्वयं ही विनुते राज्ञाम् कन्नकाशादिशम्बरम् श्रीदुष्मन्त उवाच उपपन्नम् इदं शुभ्रु जातया कूशिकन्नये स्वयं हि वीनुते राज्ञाम् कन्नकाशादिशम्बरम् बोलिए माता जी। श्री दुष्मन्त उवाच राजा दुष्मन्त ने कहा उपपन्यम तुम्हारी स्थिति के अनुरूप इदम इह शुभ्रु हे सुंदर मुनि वाली शकुंतला जातया आपने जन्म के कारण कूशिक अन्नये विश्वमित्र ने कुल में स्वयं स्वयं ही निस्संदेह वीनुते चुनती है याज्ञम राज परिवार की कन्नका लड़किया सदीशम समान स्तर के बरम पोती को पुरोना पढ़ दो ना अनुवाद आता मेरा गला खराब है पूरा। हाँ
अनुवाद राजा दुष्मंत ने उत्तर दिया हे सुंदर रोहों वाले सुकंतला तुमने महर्षि विश्वामित्र के कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा आतिथ्य तुम्हारे कुल के अनुरूप है। उसके अतिरिक्त राजा की कन्या सामान्यतया अपने वर स्वयं चुनती है। तात्पर्य महाराज दुष्मंत का स्वागत करते हुए शकुंतला ने स्पष्ट कहा आप यहाँ रुक सकते हैं और हमारा आतिथ्य ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह उसने इंगित कर दिया कि यह महाराज दुष्मंत को पति रूप में चाहती है। यहाँ तक दुष्मंत की बात थी यह तो प्रारंभ से ही जब से उसने देखा था शकुंतला को पत्नी के रूप में चाह रहा था। अतः पति पत्नी के रूप में मिलने की स्वीकृति स्वाभाविक थी। शकुंतला को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही महाराज दुष्मंत ने उसे स्मरण कराया कि राजकन्या के नाते उसे अपना बल स्वयंवर खुली सभा में चुनना चाहिए। आर्य सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें सुप्रसिद्ध राजकुमारियों ने स्वयंवर द्वारा प्रति चुनाव किया है। उदाहरणार्थ सीता देवी ने रामचंद्र जी को पति रूप में चुना और द्रौपदी ने अर्जुन को चुना था। ऐसे और बहुत से उदाहरण है। अतएव सहमति से या खुली प्रतियोगिता में अपना बल चुनने को छूट थी। आठ प्रकार की होती है जिनमें पारंपरिक सहमति द्वारा विवाह करना गांधर्व विवाह कहलाते हैं। सामान्यतया माता पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए वर कन्या का चुनाव करते हैं, परंतु गांधर्व विवाह स्वयं वर से होता है। यद्यपि भूतकाल में स्वयं वर द्वारा या सहमति से विवाह होते थे, किंतु विवाह विच्छेद जैसी वस्तु नहीं पाई जाती थी। निस्संदेह निम्न जातियों में असहमति होने पर विवाह विच्छेद होता था, किंतु सहमति से विवाह की प्रथा उच्चतम गतियों में थी। किंतु क्षत्रिय परिवारों में विशेष रूप से प्रज्वलित थी। महाराज दुष्मंत द्वारा शकुंतला को स्त्री रूप में ग्रहण करना वैदिक संस्कृति के अनुरूप था। यह विवाह जिस रूप में हुआ उसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है।
श्रीकन्नमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति शापदान्तिकं वन्देऽयं श्रीगुरु श्रीजितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं शोभनोरघुनतान्वितं संसजीवं श्वाद्वैतं शावधूतं परिजनशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् शोभनौ ललिता त्रिविशाखान्वितंश्च मूकं कल्पाचलं पङ्गुं लङ्घते गिरिं जप्तिपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। प्राकृत विवाह और अप्राकृत विवाह, इस दोनों में अंतर क्या है? श्री गोपाल जी इस श्लोक का तात्पर्य में विश्लेषण किए। प्राकृत विवाह में जो प्राकृत पुरुष तथा स्त्रिया में जो विवाह होते रहते हैं, श्री गोपाल जी वर्णन की वो बंधन का कारण होती है। और अप्राकृत विवाह में उसी लीला को शोभन करने से इसी जीवन में भाव संसार पार होकर आप वैकुंठ धाम तक जा सकते हैं। आज का समाज में जो विवाह वगैरह होते रहते हैं, कहते हैं कि वो बंधन का कारण है। और आध्यात्मिक विवाह, जिस विवाह का लीला श्रवण करने में जितने भी पाखंडी व्यक्ति हो वो जाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का लीला में भाग ले सकते हैं। राजा दुष्मंत शकुंतला का जो पहली बार दर्शन किया, इसके पहले श्लोक में हम लोग का ध्यान की, राजा दुष्मंत ने शकुंतला को बताया कि हे कोमल नयन पत्र, मतलब आपको कमल नयन, और आज का श्लोक में वर्णन की शुभ्रू, शुभ्रू का अर्थ श्लोकोपा जिसमें वर्णन किए कि सुंदर मुहि वाली शकुंतला, सुंदर मुहि वाली शकुंतला। पहला श्लोक में 11 नंबर
श्लोक में शकुंतला को राजा दुश्मन ने वर्णन की कि कमल सुंदर पत्राक्ष, मतलब आपका जो आंख है ये कमल सुंदर का मान है। और ये श्लोक में वर्णन कर रहे कि शुभ्रु, मतलब आप सुंदर से सुंदर हो। तो राजा दुश्मन जब शकुंतला को देख लिए तो उन्होंने पहले चुन लिया कि ये मेरा होने वाले पत्नी है। और शकुंतला भी राजा दुश्मन के ऊपर इतना आसक्त हो गई कि कहने लगे कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं सब आपको अर्पित करना चाहता हूं, आप मेरा आदरणीय है, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं। इसको कहते हैं कि अप्राकृत संबंध। इस अप्राकृत संबंध में प्रभा जी भजन के तात्पर्य का अंतिम में कि आज का दिन में, आज का समाज में, क्योंकि समाज कलुषित हो गए, सोसाइटी बिकम ए पॉल्यूटेड। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि समाज आज कलुषित हो गए अपना कारण के द्वारा। मैं इस समाज को कलुषित कर दिया हूं कि अपना चरित्र सही नहीं है, जिसके लिए कहते हैं कि प्राकृत विवाह और अप्राकृत विवाह में कितने अंतर है। गंधर्व विवाह का अर्थ सिलभोपा जी वर्णन की कि गंधर्व विवाह का अर्थ होता है कि लड़कियां जाके स्वयंवर सभा में अपना मन का माफिक पोती को चुन सकती थी, आज भी चुनते हैं। ऐसा तो बहुत बड़ी बार है जिसमें माता पिता का कुछ विवाह में कुछ संबंध ही नहीं रहते, अपना लड़की अपना लड़का दूसरा चुन लेते, चुनने के बाद आकर माता पिता को कहते कि देखो मैंने इसको चुन लिया हूं, आई वॉन्ट टू गेट मैरी विथ हर, तो मेरे को इनको शादी करना है, आप मेरे को आशीर्वाद दे दो। माता पिता का कुछ कर्तव्य नहीं रहते। लेकिन इस विवाह जो कि गंधर्व विवाह का विकृत रूप है, गंधर्व विवाह में लड़की आके स्वयंवर सभा में अपना धर्म पोती को चुन लेते थे, जैसा कि शास्त्र में इसका अनुमोदन भी किया है, भगवान रामचंद्र ने किए। तो ये अनुमोदित विवाह है गंधर्व विवाह। लेकिन आज का समाज में जो विवाह वगैरह चलते हैं वो गंधर्व विवाह का विकृत रूप, जिसके लिए गंधर्व विवाह कोई प्रश्न आ सकते किसी का मन में, अरे गंधर्व विवाह में भी लड़का लड़के को चुन लेते थे, लड़कियां भी जाकर लड़का को चुनते थे, आज का दिन में भी लड़का लड़के को चुन लेते हैं, माता पिता का कुछ कर्तव्य नहीं रहता इसमें। जैसा अगर घर में किसी का लड़का है कि लड़की है, जब लड़का लड़की बड़ा हो जाते हैं तब माता पिता का एक चिंतन चालू हो जाते हैं, एक हेडेक होता है कि मेरा लड़की बड़ा हो गई, अभी इसको शादी करना है। लेकिन गंधर्व विवाह में धार्मिक कार्यकलाप के द्वारा एक गंधर्व विवाह होता है। शास्त्र में वर्णन किए कि किस तरीके से गंधर्व विवाह होता। लेकिन आज का दिन में जो गंधर्व विवाह का विकृत रूप में, और जब विकृत रूप से विवाह होते हैं गंधर्व विवाह का, तब जीवन में संकट आ जाते हैं। एक लड़का एक लड़की को चुन लिए, चुनने के बाद बड़ा अच्छे तरीके से बड़ा धूमधाम से शादी वगैरह करा दिए, 6 महीने बाद दिखाई पड़ते हैं कि लड़का भी कोर्ट में पहुंच जाते हैं, एक बड़ा वकील को पकड़ लेता है, एक वकील को चाहिए, एक अच्छा लॉयर होना चाहिए, और लड़की भी जाकर उसी कोर्ट में और एक लॉयर को पकड़ लेते हैं। श्री बाबा जी आगे चलते तत्पर जो बताए कि आज का दिन का जो विवाह होता है इस विवाह का अंतिम कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन उसी समय का विवाह अंतिम कोर्ट में नहीं पूछते थे क्योंकि वो धार्मिक विवाह रहता था। आज का दिन में विवाह होते, पहला जमाने में जब विवाह होता था तो एकदम यज्ञ हवन इज ए कंपल्सरी फॉर द मैरिज सेरेमनी। आज का दिन में क्या कहते, नहीं नहीं वो यज्ञ है और ज्यादा समय निकल जाता है उसमें। कहते कि शुभ विवाह, जो जब विवाह होता है ना तब कार्ड में लिखा रहता है शुभ परिणय, शुभ विवाह, मैरिज सेरेमनी, तो शुभ रहता है विवाह में। लेकिन विवाह हो जाने के बाद वो अशुभ हो जाते हैं। क्यों अशुभ हो जाते हैं? गोपाल जी आगे चलते तात्पर्य में व्याख्या की इसके ऊपर कि शुभ लिखा रहता है शादी में, कोई भी शादी विवाह का कार्ड आप देख सकते हैं उसमें सिर्फ एन ए लिखा रहता है कि विवाह शुभ विवाह, मतलब विवाह शुभ होता है। लेकिन थोड़ा समय बाद वो शुभ निकाल जाते हैं अपने हृदय से, शुभ का जगह में अशुभ पहुंच जाते हैं और वही विवाह अंतिम में पहुंच जाते कोर्ट तक। कोर्ट में जाकर जिन्होंने इतना बड़ा धूमधाम से शादी की थी और उसी शादी को बर्बादी करने के लिए कोर्ट में पूछना पड़ता है, लॉयर को पकड़ना पड़ता है, वकील को, क्या कहते हैं कि नो 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 मेरे को ये नहीं चाहिए। तो सर विवाह विच्छेद जिसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि इंग्लिश में डिवोर्स। आज से 100 साल पहले भी कोई सोचता नहीं था कि डिवोर्स करना जरूरी है, लेकिन आज का दिन में डिवोर्स एक कंपल्सरी मैटर आ गया। जय श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो डिवोर्स एक कंपल्सरी मैटर हो गया सबके सामने। बड़ा धूमधाम से शादी की, वो लाखों करोड़ रुपया खर्चा कर दी, लेकिन बाद में वही दोनों को पहुंचना पड़ता है कोर्ट में, ये मेरे को डिवोर्स देना है, मतलब विच्छेद होना चाहिए। क्यों होता है ये कारण? क्योंकि पहला जमाने में जो शादी विवाह होते रहता था वो धार्मिक कार्यकलाप का द्वारा होता था। आगे चलते श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे कि शादी विवाह में ओम ये शब्द उच्चारित होना जरूरी था। और आजकल दिन में क्या होता है, हलचल दुनिया में अपना माता पिता भी सोच लेते हैं, लेकिन नहीं, ये हवन वगैरह कराने में ज्यादा समय निकल जाता है इसमें। उसमें से अच्छा है कि मैरिज रजिस्टर मंगाऊं, तो कोर्ट से कोई रजिस्टर आ जाता है आपका सामने। आज जो धार्मिक कार्यकलाप में जो शादी विवाह होता था उसको कट करके, मतलब उसको समय को कट करके पहले क्या होना चाहिए कि रजिस्ट्री मैरिज। आज से 100 साल पहले भी कोई सोचा नहीं था कि विवाह मतलब एक पेपर में लिखना पड़ता है। पहले जमाने में सबको मन में विचार था कि शादी विवाह मतलब हवन का सामने अग्नि साक्षी के द्वारा अग्नि को साक्षी बनाकर पति पत्नी एक दोनों को हाथ मिला लेते थे। ज्योतिषांग जो शादी विवाह होते हैं उसको पता होगा कि शादी विवाह में एक मंत्र निश्चित रूप से उच्चारण करना पड़ता है, ज्योतिषांग हृदयंग मम। लेकिन आज के दिन में जो आज के समाज में जो शादी विवाह चलते रहते हैं वो मंत्र वगैरह उच्चारित एकदम साइड कर दी उसको, कहते कि नहीं वो शॉर्टकट करो। कोई अगर पंडित जाए शादी कराने के लिए बोलते पंडित जी आप एक काम करो, वो मंत्र जितना है ना सो शॉर्ट में बताओ, कट कर दो कट, क्योंकि अभी मैरिज रजिस्टर आने वाले हैं, मैरिज रजिस्टर का ज्यादा वैल्यू हो। इस मुंबई नगरिया में आप अगर घूमते रहे तो आपको पता होगा बहुत सारे एड वगैरह रहते हैं, फॉर मैरिज रजिस्टर प्लीज कॉल, बहुत सारे जगह में एड रहता है, आप टीवी खुल कर भी देख सकते हैं इसमें लिखा रहते हैं। क्योंकि धार्मिक कार्यकलाप के ऊपर विश्वास नहीं है, इस कार्यकलाप में जब किसी को विश्वास नहीं रहते है तब अंतिम में उनको जाना पड़ता है कोर्ट में। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्राकृत पुरुष तथा स्त्रिया का जो विवाह वो बंधन और अप्राकृत विवाह इस लीला को स्मरण करने में कोई भी बोध धाम तक जा सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी तो आचार्य प्रभु ने शादी विवाह की थी, आज का समाज में सरकार ने ऐसा नियम बना दिए कि अगर घर में किसी का एक पत्नी है तो वो पत्नी के साथ जब तक डिवोर्स नहीं होता है तो दूसरा पत्नी दूसरा किसी को शादी नहीं कर सकता है, तो पुलिस आकर आपको पकड़ भी सकते हैं। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए, एक नियम आ गए कि 498 बोलता है और 495 जो इंडियन पेनल कोड में नियम है धारा, इसके द्वारा लड़की वाले के घर लड़का को एकदम पुलिस तक लेकर जाते हैं, 3 महीना बिल नहीं मिलता है किसी को। आज का विवाह का बंधन देखिए क्या होता है, पहले जमाने में ये सब धारा नहीं था। जितने मैरिज रजिस्टर आकर जितना मैरिज रजिस्टर आकर साइन कर रहे हैं उतना ज्यादा से ज्यादा 498 आ जाते हैं। कुछ दिन पहले एक अखबार में न्यूज आया था कि आज का दिन में भारत में सबसे ज्यादा डिवोर्स वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि हर फैशन दुनिया समाज हमारा कलुषित हो गए, सोसाइटी बिकम पॉल्यूटेड, और इस समाज का दूषित होने का कारण कोर्ट में जाना पड़ता है हर व्यक्ति। राजा दुष्मन ने जब शकुंतला को देखा, देखने के बाद उनका मन में ऐसा विचार आ गया कि कहने लगे कोमल लोचना नेत्र अक्ष, हर बाद में क्या बात है कि शुभ्रु, मतलब आपने इतने सुंदर मोहित वाली आप अच्छे घर के हो, आपका क्षमता है आप किसी को आप चुन सकते हो। तो इसी तरीके से शादी विवाह पर लीला को श्रवण करने में कोई वैकुंठ धाम जा सकते, जैसे कि अद्वित आचार्य प्रभु ने शादी की थी, श्री चैतन्य महाप्रभु का शादी हुआ था, जिस शादी को देखने के लिए सब व्यक्ति इकट्ठा हो गए, सिर्फ नवद्वीप वासी नहीं पूरा वैकुंठ से आकर देवता लोग आकर ये श्री चैतन्य महाप्रभु का शादी विवाह लीला को दर्शन किए और साथ साथ श्रवण भी किए। अद्वित आचार्य प्रभु जिन्होंने दो शादी की थी एक साथ, आज का दिन में अगर कोई जाकर एक साथ दो शादी करे तो निंदा वाक्य का प्रयोग होता रहता है, भले भी अब सामने ना बोले पीछे से बोलते हैं कि देखो ये लड़का का कैसे चरित्र है, घर में एक पत्नी है फिर भी आओ एक दूसरे को शादी कर ले। क्यों आज का जो विवाह होता है धार्मिक कार्यकलाप को छोड़कर अधार्मिक कार्यकलाप को ज्यादा पकड़ लेते हैं, जिसके लिए निंदा वाक्य का प्रयोग होता है। देखिए आदित्य जी को उन्हें दो दो शादी की थी, एक सीता ठाकुरानी को शादी की और श्री देवी ये दोनों को शादी कर दी। सीता ठाकुरानी और श्री देवी उनका पिताजी का नाम है नृसिंह भादुरी। फिर सीता ठाकुरानी कैसे इसी धराधाम में प्रकटित हुए थे और कैसे शादी विवाह हुआ था जो आज का श्लोक के साथ संबंध युक्त है, ये अप्राकृत शादी विवाह का लीला सुनने में भक्त जन का कितना फायदा होता है। किसी का मन में प्रश्न आ सकते हैं कि अरे शादी विवाह बोलने से क्या है, ये तो हम लोग हर समय देखते रहते शादी विवाह होते रहते, कुल उपनयन तथा उपपन्यम इस अप्राकृत शादी विवाह का लीला सुनने में क्या फायदा क्या है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अप्राकृत शादी विवाह का लीला सुनने में कोई भी अगर पाखंडी व्यक्ति भी इसको श्रवण करे इसको दर्शन करे तो वो इसी जीवन में वैकुंठ धाम तक जा सके। महाप्रभु का शादी विवाह में पूरा नवद्वीप बस इकट्ठा हो गए, सिर्फ नवद्वीप वासी, वैकुंठ तो धाम से भी सब लोग आ गए, देवता लोग पहुंच गए थे उसी जगह में। अरे आदित्य जी प्रभु ने जब शादी विवाह की थी पूरा शांतिपुर बस इकट्ठा हो गए थे उसी जगह में। इस तरीके से शादी विवाह हुआ था उनका। उन्होंने दो शादी की थी, एक है सीता ठाकुरानी, दूसरा है श्री देवी। उनका पिताजी का नाम है नरसिंह भादुरी। सबको पता है कि ये नरसिंह भादुरी एक साथ दो कन्या प्रसव की थी, लेकिन शास्त्र में वर्णन किए कि लोगो भागवत अमृतम में वर्णन है, कृष्ण कल्पतरु ग्रंथ में वर्णन किए कि नृसिंह भादुरी भगवान का एक महान पुजारी, वो हर दिन भगवान का चरण में जाकर कोमल पुष्प अर्पित करते रहते थे। उनका घर का सामने एक उनका घर है बांग्लादेश में एक जगह है नारायण गांव बोलकर जहाँ पे है, जिस गांव का सामने एक बहुत ही सुंदर तालाब है, और नृसिंह भादुरी हर दिन उसी तालाब में जाकर डुबकी मारते थे, और डुबकी मारने के बाद उसी तालाब से दो कोमल पुष्प लेकर भगवान का चरण में उन्होंने हाथ दिन अर्पण करते रहते थे। मैं दो तीन महीना पहले मैंने जब बांग्लादेश गया था मैं जाकर देखा कि आज भी उस तालाब वर्तमान है, और नृसिंह भादुरी उसी तालाब में डुबकी मारने के बाद हर दिन दो एक कोमल पुष्प लेकर आकर उनका सेवित विग्रह था राधा प्राणवल्लभ, उसी राधा प्राणवल्लभ को हर दिन उस कोमल पुष्प अर्पित करते रहते थे। एक दिन उन्होंने डुबकी मारा, डुबकी मारने के बाद जब बाहर आए आकर देखा कि सामने एक बहुत बड़े कमल का पुष्प है, बहुत सुंदर, ऐसे ही तो कमल दिखने में अच्छा है, तो उसी कमल का अंदर उन्होंने देखा कि एक अंगुली विशिष्ट भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन किए नरोड़ी चक्रवर्ती ठाकुर, एक अंगुली विशिष्ट कन्या सदृश। तो देखा कि इस कमल नयन का ऊपर एक अंगुली विशिष्ट एक बहुत ही सुंदर एक कन्या का एक लड़की मिला सामने, तो उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए देखकर। तब उन्होंने उसी कमल नयन का ऊपर से आई अंगुली विशिष्ट कन्या को लेकर घर में आए। जब घर में आ रहा था तब उन्होंने देखा कि उनका धर्मपत्नी ऐसे ही सेम और एक कन्या को प्रसव की, तो उसी एक अंगुली विशिष्ट कन्या सदिश आनयन तब नरेंद्र चक्रवर्ती ठाकुर भक्तिरत्नाकर इसका बहुत ही सुंदर व्याख्या की है कि नृसिंह भादुरी किस तरीके से दो कन्या को प्रकटित किए थे। तो जो कन्या को उन्होंने इसी तलाव में मिला उसी कन्या को लेकर आकर अपना धर्म पत्नी को अर्पित की, और सेम डेट में एक ही दिन में अपना धर्म पत्नी और एक कन्या को प्रसव की थी जिसका नाम है श्री देवी, और जो कन्या उन्होंने तलाव से मिला था उनका नाम है सीता ठाकुरानी। तो दोनों को लेकर आए साथ में, तो देखा कि एक हफ्ता जाने के बाद जो कन्या को उन्होंने प्राप्त की थी तलाव में उसी कन्या और अपना गर्भ जात कन्या दोनों बराबर एक साथ बढ़ना चालू हो गए। तब से सबको पता हुआ कि नरसिंह भादुरी एक साथ दोनों जमज कन्या को पैदा किए थे, लेकिन शास्त्र में वर्णन है इसे सीधे भी उनका गर्भजात संतान है, और सीता ठाकुरानी भगवान का कृपा से उन्होंने प्राप्त की थी। जब दोनों बढ़ने लगे स्वाभाविक रूप से माता पिता का मन में चिंतन आ गया कि मेरा लड़की बड़ा हो रहा है, सबका मन में चिंतन रहता है जब लड़की कुछ 17-18-19 साल हो जाती है तब माता पिता का मन में सबसे बड़ा टेंशन काम ही रहता है, कि देखो अभी मेरा लड़की बड़ा हो गई, मेरा बेटी बड़ा हो रही, इनको अच्छे तरीके से लड़कों को चुनना है। ये एक दूसरे को बताते हैं, अरे भाई साहब मेरा घर में मेरा बेटी बड़ा हो गए, आप देखो आपका तो बहुत सारे परिचित है, आप जाके कुछ चुनो, मेरे लिए कुछ करो, मेरा बेटी को अभी शादी विवाह देना है। नृसिंह भाजपा जी के मन में चिंतन आए कि मेरा दो दो बेटी है, जैसे मैं शादी कराऊं, तो उन्होंने जाकर एक दिन सपने में देखा कि अदित्य आचार्य प्रभु और नृसिंह भादुरी दोनों एक साथ मुलाकात हो रहे थे। और नृसिंह भादुरी जाकर ये अदित्य आचार्य प्रभु को प्रस्ताव दे दिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा दो बेटी को अपना हाथ में मैं समर्पित करना चाहता हूं। लेकिन इस भावना को नृसिंह भादुरी अपना मन में ही रख दिए, किसी को नहीं बताया उन्होंने। उनका एक परम मित्र था जो कि चतुर्चरण ग्रंथ में बहुत अच्छे तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन भी किए हैं, अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन है। भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर इसके ऊपर बहुत ही अच्छा टिप्पणी भी बताया है अदित्य आचार्य को शादी विवाह के उत्सव में। और नृसिंह भादुरी एक किसी को नहीं बताया, लेकिन उनका मन में चिंतन था कि मेरे दो बेटियां हैं, मैं कैसे क्या करूं। ये जब चिंतन करने लगे तब एक दिन उन्होंने देखा कि अपना दो कन्या को मैंने अदित्य आचार्य के चरण में मैं समर्पित किया हूं। बहुत दिन हो गया उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन उनका एक परम मित्र था जो कि परम वैष्णव, उनका नाम है श्यामादास आचार्य। तो जब दोनों दोनों परम मित्र रहते हैं ना, जब एक दोनों को मिलते रहते हैं, तो अपना घर का वार्तालाप, अपना घर में क्या चल रहा है इसके ऊपर वर्णन, इसके ऊपर चर्चा होते रहते हैं। तो श्यामादास आचार्य नृसिंह भादुरी के घर में आए, तो नृसिंह भादुरी के घर में जब आए तो नृसिंह भादुरी ने बड़ा अच्छे तरीके से उनको स्वागत वगैरह किया, स्वागत वगैरह किए और बड़ा अच्छे तरीके से खिलाए। खिलाने के बाद जब दोनों में वार्तालाप चालू हुआ, एक मित्र दूसरा मित्र को जब देखते हैं ना, एकदम अगर गाढ़ा मित्र होगा बचपन का हो, तो एक दूसरे के पास कोई बात को छुपा नहीं पाते, ये लक्षण होता है। जो परम मित्र रहता है, अगर बचपन का मित्र हो तो कभी वो संबंध टूटते नहीं। तो श्यामदास आचार्य और नृसिंह भादुरी बचपन का परम मित्र है। तो श्यामदास आचार्य जब नृसिंह भादुरी के घर में आए तो नृसिंह भादुरी बड़ा खुश हुए, बात सुनकर बड़े अच्छे तरीके से स्वागत वगैरह खिलाए, खिलाए अच्छे तरीके से। खिलाने के बाद दोनों में अपना हृदय का वार्तालाप चालू किया। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन किए है, बड़े अच्छे श्लोक के साथ इसका वर्णन है। नृसिंह भादुरी और श्यामदास आचार्य हृदय कथोप कथन करे नित्य संग, नित्य संग करे गिया करह विचार, आमारो हृदय कथा कहिनु तुमार। इसको भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इसका श्लोक के साथ नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर इसका वर्णन की। तो जब दोनों में वार्तालाप चालू हुए तो नृसिंह भादुरी कहने लगे कि देखो मेरा परम प्रिय मित्र, मैं आज बहुत आनंदित हूं आप मेरा घर में आए हो, लेकिन मेरे मन में कुछ विचार है जो बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। तो श्यामदास आचार्य पूछने लगी, आप बताओ क्या आपका मन में है, क्या आप विचार करके रख दिए हो, आप बताओ मेरे को, बताओ आप किसी को नहीं बताने का, मैं आपको खुद बोल रहा हूं क्योंकि आप मेरा परम मित्र हो, इसके लिए तो बताओ। तो देखो मेरा मन में विचार, आपने देखा ना मेरे दो बेटिया को, तो मेरा मन में विचार था कि मेरा ये दो बेटिया को जाकर मैंने अद्वित आचार्य के चरण में मैं ये दोनों को समर्पित करना चाहता हूं। श्यामदास आचार्य एकदम आश्चर्यित हो गए, अरे ये अद्वित आचार्य को जाकर मैं कैसे बोल सकता हूं, उनका बोलना कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी आपने मेरा परम मित्र हो, मित्रों कथा सुनिया कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके वर्णन किए चैतन्य चतुर्थ में, मित्र कथा सुनो बारो बारो आर तुम्हारो कथा हमी कोई भी पुनर्वार। कहते कि आपने मेरा परम मित्र हो, आपका हृदय का भार आपने मेरे को बताया, मेरा कर्तव्य होता है आपको सहयोग देने का। लेकिन अद्वैत आचार्य बड़ा कड़क व्यक्ति है, उनको जाकर मैं कैसे बोल सकता हूं। फिर भी अपना मित्र को बात को उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, जाकर उन्होंने एक दिन बता भी दिए कि देखिए आपको एक बात बोल रहा हूं, भले भी आप नाराज हो जाए लेकिन किसी को नहीं बताने का। मतलब बताओ क्या है? मतलब मेरा परम मित्र है जो कि दो कन्या है उनके पास, उनका मन में विचार है कि वो दो कन्या को आपका चरण में वो समर्पित करना चाहते हैं। तो अद्वैत आचार्य जी ये बात सुनकर मन में तो विचार थे कि मेरे को शादी विवाह करना है, तब उन्होंने हंसना चालू कर दिया, कहो कहो श्यामादास आर की चुहार तुम्हारो मोने रो भावना आमी स्मरण पुतुवार। कहते कि श्यामादास आपका मन में यार क्या क्या भावना है आप मेरे को बता सकते हो? तुम्हारो मोने रो भावना आमी स्मरण कोई पुतुवार, आपका मन में जो भावना है उसी भावना को मैं हर समय मैं स्मरण करना चाहता हूं। তোমারও মনের ভাবনা লইয়া আমি যাইনু তারিবারে, তাহাতে দর্শন করিমু আমি প্রতি তারে তারে। যাতে কি তোমার মন মে যে ভাবনা হ্যাঁ উসি ভাবনা কো মানে স্বীকার কিয়া হুঁ, আর মে চাহতা হুঁ কি মে একদিন যাকর উনকো মিলকে ভি আতা হুঁ। তো দেখি ইসকো কহতে হ্যায় শ্রী প্রভুপাদজি ইসকো পরে বহুত সুন্দর তৎপরজি বিশ্লেষণ কি, ইসকো পরে ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী ঠাকুর भक्ति विनोद ठाकुर का मुखार विंद से इस विवाह लीला को जब उन्होंने श्रवण की थी गोद्धम धाम में बैठ के गोद्धम द्वीप में, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति चिदंत सरस्वती ठाकुर को इस लीला को वर्णन की। भक्ति चिदंत सरस्वती ठाकुर जो कि आकुमार ब्रह्मचारी, फिर भी आकुमार ब्रह्मचारी होकर भी इस विवाह लीला का श्रवण किया। किसी का मन में प्रश्न आ सकते हैं, अरे ब्रह्मचारी होकर ये शादी विवाह को लीला श्रवण करने का क्या जरूरी क्या है? उनका मन बिगड़ सकते हैं कभी भी। इसलिए पोपा जी इसको वर्णन की, कोई भी अगर अप्राकृत विवाह लीला को श्रवण करे, वही अप्रकृत विवाह लीला का श्रवण का माध्यम से व्यक्ति वैकुंठ धाम तक जा सकते हैं। इसके लिए भक्तिचंद्र सरस्वती ठाकुर जो कि आत्मार्थ ब्रह्मचारी होकर भी इस लीला को श्रवण किए थे भक्ति में ठाकुर का मुखार बिंद से। तो अधिक समय तो होगा, मैं छठ में बता देता हूं। अद्वैत आचार्य प्रभु जब सुन ली ये बात को, मतलब ठीक है मैं भी शांतिपुर आना चाहता हूं, तो उन्होंने शांतिपुर में आए। जब शांतिपुर में आ गए, नरसिंह भादुरी को पता हो गए कि अद्वैत आचार्य प्रभु शांतिपुर में आ रहे हैं। नरसिंह भादुरी जाकर अपना दो कन्या को लेकर गए सामने, सामने लेकर गए और नरसिंह भादुरी अच्छे से उनको स्वागत पकड़े थे। पा धूत करुणो तब पोक्षालनो आजी। नरसिंह भादुरी भले भी जमाई मन में विचार तो कटकाली नहीं थी, फिर भी नरसिंह भादुरी का मन में विचार था कि अद्वितीय आचार्य एक महान भक्त है जिनका आह्वान से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसी धराधाम में आपने को प्रकटित की थी। नृसिंह बहादुर जाकर उनको पादव पुक्षलन कराया था, पाद धो तो कर दिया उन्होंने, अच्छे तरीके से सेवा वगैरह की। करने के बाद जब दोनों में वार्तालाप चालू हुए तो जब चित्रमंगल कुंस में वर्णन की है, निशिंग तुम्हारो मुनेरो कथा सुनिनु आमी बारो बार, तुम्हारो मुनेरो बार्ता लईते आमी आसिलु एबार। तो मैंने आपका मन में जो विचार था ना वो मैंने सुन लिया, और उसी विचार को स्वीकार करने के लिए मैंने आज इस शांतिपुर में आए। नृसिंह भादुरी अपना दो कन्या को अद्वित अचक चरण में समर्पित कर दिए थे। इसका बहुत सुंदर शादी विवाह लीला का वर्णन है। महान महान वैष्णव का शादी विवाह लीला शोभन करने में अपना जीवन को सुधार सकता है कोई। महाप्रभु का शादी विवाह लीला तो इतना बड़ा धूमधाम से बनाए कि पूरा नवद्वीपवासी पहुंच गए थे उसमें। साल भर महीना भर वो लोग शोभन करते रहे महाप्रभु का शादी विवाह लीला, अद्वैताचार्य का शादी विवाह को साल भर शोभन किए सब लोग, आज भी शोभन करते रहे। जिसके लिए कहे कि अद्यावधि लीला करें श्री गौरांग राय कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। इस अप्राकृत शादी विवाह लीला को शोभन करने में अपना जीवन को सुधार सकते हैं। ये तो किसी का मन में प्रश्न आ सकते हैं कि राजा दुष्यंत तो शकुंतला को देखते उनका मन में विचार आ गया कि मेरे को इनको शादी करना है। स्वाभाविक रूप से एक लड़का जब एक लड़की को देखते रहते हैं तो उनका मन में कुछ दूसरा भावना प्रकटित होता है। आज का दिन में जब एक लड़का दूसरे लड़के को चुन लेते हैं तो दूसरा भावना से चुनते हैं, काम भावना से चुनते हैं, लेकिन अप्राकृतिक शादी विवाह में काम भावना का कोई स्थान नहीं। जिसके लिए अप्राकृतिक शादी विवाह को शोभन करने में अपना जीवन को कोई सुधार करते इसी भवबंधन में पार होकर वैकुंठ धाम तक जा सकते हैं कोई। इसके लिए अप्राकृतिक शादी विवाह जैसे कि राजा दुष्यंत शकुंतला को भी। आज का दिन में कोई किसी को मिलता है तो पहले बता ओ हाउ आर यू, यू आर सो ब्यूटी, लेकिन राजा दुष्यंत ने क्या बताया, शु कमलो नयना नक्षत्र अक्षताय। आज दुष्यंत लोगों में बताया कि शुभ्र मतलब अपनी इतने सुंदर हो। तो देखिए दोनों समय का वार्तालाप में भी कितना फर्क है। आज क्या बताते, ओ यू आर सो ब्यूटी, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, बोलते आपने कितने सुंदर हो, आपको देखने से मेरे को आनंदित होता है। लेकिन राजा दुष्यंत ने क्या बताया, शुभ्र कोमल नयना, इसी दोनों समाज का दोनों समय का विवाह में अंतर है। शास्त्र में आठ प्रकार का विवाह का वर्णन किया है, और ये गंधर्व विवाह के द्वारा व्यक्ति अपना जीवन में सुखी बना सकते हैं। आज का दिन में गंधर्व विवाह का विकृत रूप से विवाह होते हैं, जिसके लिए उसी विवाह में समाज का कारण कभी कभी जाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा समय के लिए वो आनंद मिलता है, लेकिन बाद में उनका अंतिम फल बंधन का कारण हो जाता है। और अप्राकृतिक शादी विवाह सुनने में श्रवण करने में दर्शन करने में भगवान का धाम में आप पहुंच सकते हैं। भगवान रामचंद्र सीता विवाह ऐसे बहुत सारे हमारा उदाहरण है, शास्त्रों में इतिहास में भी बहुत सारे उदाहरण है। तो अप्राकृत शादी विवाह लीला शोभन करना सबसे जरूरी होता है, जो आज का श्लोक में तात्पर्य में श्री गोपाल जी ने यही बताया कि अप्राकृतिक शादी विवाह सुनने में भक्त जन का क्या फायदा मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद
कैसे करते हैं वो करीन के लिए मेरा
क्वेश्चन है भाई
सुन लो
वो उधर वो है माया वो राम से
ओ जी रामचंद्र प्रभु कहाँ प्ले कर दो ना इसका प्ले कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग किया हूँ प्ले करने में
सेव हुआ कि नहीं
हाँ अभी तो
अब सेव नहीं हुआ ना
नहीं
चालू है